نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم یہاں پہ ایک بڑی خوشی کے موقع پہ جمع ہوئے ہیں الحمدللہ. سب سے پہلے تو ان کو بہت مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکت دے اور اللہ تعالیٰ ان کو اس جوڑے کو نہ صرف دنیا کا ساتھ بلکہ جنتوں تک کے ساتھ عطا فرمائے. اور واقعی خوشحال گھرانہ اور ایک آئیڈیل کپل وہی ہوتا ہے کہ جو نہ صرف دنیا میں پرسکون زندگی گزارے بلکہ جنت تک ود فیملی انٹر ہو. یہ ہوتا ہے ایک خوشحال گھرانہ. تو سب کے لیے ہی یہ دعا ہے اور خاص الخاص ان کے لیے. آج ہم جو جمع ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنی نیتوں کو دیکھ لیں کہ ہم کس لیے یہاں پہ آئے ہیں. کیا ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ شادی کیسے کرنی چاہیے, کیسے کامیاب ہوتی ہے, ان باتوں کو سننے کے لیے, یا جسٹ انہوں نے انوائٹ کیا تو ہم آ گئے؟ ہاں, تو اگر تو صرف انہوں نے انوائٹ کیا تھا اس لیے آ گئے تو اب نیت کو انشاءاللہ بدل لیتے ہیں کہ اب ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں تاکہ ہم کچھ لے کر یہاں سے جائیں. دیکھیں, آپ لے کر تبھی جائیں گے جب آپ کی نیت خالص ہوگی کہ میں کچھ سیکھنے آج جا رہی ہوں. ٹھیک ہے, وہ انویٹیشن پہ آپ آ تو گئے مگر اس انویٹیشن کے پر وہ اجر نہیں حاصل ہوگا جو علم لینے کا ہوگا. اور پھر عمل تبھی آ سکتا ہے جب آپ نے ابھی سے نیت کر لی کہ آج میں کچھ سیکھنے جا رہی ہوں جس سے میں کچھ بہتری کروں گی آگے اپنے بچوں کی شادیوں میں یا آگے اپنے بہن بھائیوں میں سے کسی کی شادی میں. میں انشاءاللہ ان چیزوں کو سیکھ کے اور اپنی بھی زندگی, اپنی میرڈ لائف کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کروں گی اور آگے بھی جس طرح نکاح ہونا چاہیے اس طرح سے کروں گی. اور یہ صرف نیولی ویڈ یا جنہوں کی شادی ہونی ہے ان کے لیے نہیں آج میں باتیں بتاؤں گی بلکہ یہ ان سب کے لیے بھی ہیں جو چاہے میرڈ ہیں لیکن اپنی جو سمجھ لیں اب مرجھائی بھی جو زندگی ہے اس کے اندر بھی بہار لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے تو یہ کہ نکاح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی, نکاح میری سنت میں سے ہے. ٹھیک ہے, کہ نکاح کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اس کا مطلب ہے کہ سنت ہونے کا مطلب کیا ہے کہ نکاح پہ بھی اجر ملتا ہے. اس لیے کہ کوئی بھی سنت ہم پوری کرتے ہیں اس پہ اجر ہوتا ہے نا. ہم بیٹھ کے پانی پی رہے ہیں, ہم دائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں, ان سب چیزوں کے اوپر جو بھی سنت پوری کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے تو اس پہ اجر پاتے ہیں ہم. تو نکاح بھی ایک سنت ہے, اور اگر آپ اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کریں گے نا تو پھر آپ کو اس کا بھی اجر ملے گا. تو سب سے پہلے تو اجر کی امید کر لیں ابھی سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ اجر عطا فرمائے گا یہ جو کام ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. دوسرا یہ کہ نکاح جو ہم اپنے ذہن کے اندر سمجھتے ہیں کہ نکاح یا شادی مینس کہ ایک دم دماغ میں کیا آتا ہے کہ جیسے بہت گرینڈ ہال ہے اور اس کے اندر بس بہترین کوئی جوڑا ہے اور پھر اس میں ویڈیو ہے اور اس کے اندر فوٹو شوٹ ہے اور اس کے اندر یہ ہے اور وہ ہے, اس کو ہم سمجھتے ہیں شادی. حالانکہ اسلام کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک تو سنت ہے, سنت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا, اس کے اوپر اجر ہوگا. تو اس کا مطلب ایسا کوئی کام اس میں نہ ہو جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو. دیکھو, خوشی منانا اللہ نے منع نہیں کیا مگر جو خوشیاں دینے والا ہے اس کو ناراض کر کے تو خوشی نہیں مل سکتی نا. اس کو نہیں ناراض کرنا بس, کیونکہ خوشی اس نے دینی ہے نا, اس کے ہاتھ میں ہے. اگر ہم نے دینے والے کو ہی ناراض کر دیا تو پھر ہم کہاں سے خوشی پائیں گے. تو اس لیے اس طرح سے سوچ کے کہ نکاح یہ وہ فینسی گرینڈ چیزیں اور یہ وہ اپنی جگہ آپ خوشی کریں لیکن کوئی ایسا کام نہ ہو, نیت اپنی بنا لیں کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس میں میرے رب کی ناراضگی ہے, میں نے وہ کرنا ہی نہیں ہے کیونکہ مجھے اپنے رب سے خوشیاں چاہیے. اور ہر ایک کی دعا ہوتی ہے جوڑے کے لیے, نئے جوڑے کے لیے, کہ اللہ ان کو خوشیوں کے ساتھ بسانا نا, یہی دعا ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہم سب کو ایک نیت کر لینی چاہیے کہ ہمارے گھروں میں شادیاں ہوں تو ہم نے انشاءاللہ سنت کے مطابق کرنی ہے اور اجر پانا ہے اس کے اوپر. फिर आपको देखिए हैप्पी मैरिड लाइफ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बड़ा मटेरियल, बुक्स मिल जाएंगी, कैसे है बड़ी आइडियल मैरिज क्या होती है, उसकी क्या टिप्स हैं, फलां हैं, ये वो है, लेकिन जो गाइडेंस हमें हदीस से, सुन्नत से मिलती है ना, कुरान और हदीस से जो गाइडेंस मिलती है वो किसी बुक में नहीं है, किसी बुक में नहीं है वो। इसलिए कि वो किसने गाइडेंस दी है, उसने जो हमें सबसे ज़्यादा जानता है, जो हमें जानता है, हमारे इन एंड आउट जानता है, जो हमारी तबीयतों को जानता है, जो हकूक़ व फ़राइज़ जिसने आयद किए हैं, उसने हमें गाइड किया है इस सिलसिले में भी कि निकाह कैसे होना चाहिए, फिर उसके बाद कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, क्या करना है, सब चीज़ों की गाइडेंस दी है। देखिए इस्लाम ने सिर्फ हमें नमाज रोज़ा रखने की नहीं सिर्फ असूल दिए कि कैसे नमाज पढ़नी, कैसे रोज़ा रखना है, कैसे, इस्लाम ने हमें इसमें भी गाइड किया है कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, मियाँ बीवी के हकूक़ क्या हैं, शादियाँ कैसे होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, और फिर शादी हो जाए तो क्या करना है, क्या हकूक़ हैं एक दूसरे पे, शादी से पहले क्या बात है, और किस तरह इस रिश्ते को खुशगवार बनाया जाए, सब चीज़ों की गाइडलाइंस हैं। तो क्यों ना हम अल्लाह और उसके रसूल से पूछें कि कैसे शादियां होनी चाहिए, और ये सारी बातें उनसे पूछने से पहले एक बात के लिए अपने माइंड को क्लियर कर लें, और वो क्या है कि हमारा अल्लाह जो है ना, उससे ज़्यादा हमारा कोई खैरख्वाह नहीं है, और उससे ज़्यादा हमसे कोई मोहब्बत करने वाला नहीं। और अल्लाह ताला कुरान करीम में फ़रमाता है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदुकुम बिकुमुल उसर, तुम्हारे लिए अल्लाह आसानी चाहता है, मुश्किल नहीं चाहता कि तुम्हें मुश्किल में डाले, तुम्हें ऐसे ऐसे हुक्म दे के जो तुमसे किए ना जाएं और तुम्हें मुश्किल हो जाएं और तुम्हारे तुम चोक करने लगो और तुम्हारे लिए एक मुसीबत बन जाए, ऐसा कोई हुक्म नहीं उसने दिया। उसके सारे अहकाम वो हैं जो तुम्हारे लिए आसानी के लिए हैं, जिसमें तुम्हारी खुशियाँ हैं, क्योंकि वो फ्यूचर जानता है, वो जानता है कि आगे उसके लिए फ्यूचर ऐसे ही जाहिर है जैसे तुम्हारे लिए अभी यहाँ पे बैठे हुए हमें जैसे कोई चीज़ जाहिर है जो हमारे सामने है, उसके लिए फ्यूचर भी ऐसे ही जाहिर है, उसकी हर डिटेल जाहिर है, उसको हर एक चीज़ पता है क्या होना है फ्यूचर में। तो उससे क्यों ना रहनुमाई ली जाए, सब चीज़ों को छोड़ो एक तरफ, आओ कुरान और हदीस से सीखो कि शादी कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, उसमें क्या अहकामात हैं अल्लाह के और उसके रसूल के। सबसे पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए इतनी प्यारी रहनुमाई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद शादियां की थी, निकाह किए थे, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, और एक बीवी के साथ गुजारा करना और निभा करना वो तो आसान है, जब एक से ज़्यादा वाइफ्स हो ना तो सब में इंसाफ करना, सबको लेकर चलना और सबको खुश रखना कितना मुश्किल है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि उन्होंने सबके साथ कितना प्यारा सलूक किया कि हर एक बीवी जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेतहाशा मोहब्बत करती थी। और इतनी शादियां होने के बावजूद हर दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के पास असर के बाद विज़िट किया करते थे, और विज़िट करके उनसे उनके हाल अहवाल जानना, उनके साथ टाइम स्पेंड किया करते थे, और उनसे ज़्यादा मसरूफ़ कौन था, उनसे ज़्यादा तो बिज़ी कोई हो ही नहीं सकता ना, लेकिन यानी सबको टाइम देते थे, सबके साथ वक्त गुजारते थे, हर एक को अहमियत देते थे, और जिस बीवी की बारी होती थी उसके पास उसके घर में रात गुजारते थे। मगर ऐसे नहीं था कि जिसके पास रात गुजारने, दूसरों का आता पता ही नहीं वो क्या कहाँ है क्या नहीं। तो इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की केयर, आपकी शफ़क़त और आपका हर एक को टाइम देना, अहमियत देना पता चलता है। फिर आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी सिर्फ एक बीवी हैं जो कि कंवारी जिनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की थी, उनकी चूँकि उम्र छोटी थी और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रुखसत होके आई थी तो अभी भी गुड़ियों से खेलती थी, तो उनकी सहेलियां आ जाती थी उनसे खेलने के लिए, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे तो वो भाग के जाके छुप जाती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बुला बुला के लाते थे कि आओ आयशा के साथ खेलो। और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के साथ दौड़ लगा रहे हैं, उनकी देखें उनके साथ उनकी उम्र का लिहाज करते हुए, अगर हमारे यहाँ भी कोई ऐसी बच्ची आए जिसका कल्चर डिफरेंट है या जिसकी उम्र अभी इतनी बड़ी नहीं है, इतनी मिच्योर नहीं है, इतनी समझदार नहीं है, तो उसका लिहाज रखना ज़रूरी है। और इसी तरह آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو انتہائی شفیق ہیں، انتہائی مہربان ہیں، انتہائی محبت کرنے والے ہیں۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چونکہ چھوٹی عمر کی تھیں، ابھی زیادہ اتنی مطلب میچیورٹی کی بہت ایج کو جس طرح کے ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں اس طرح نہیں تھیں، مگر آپ دیکھتے ہیں ان کی بھی سمجھداری کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے علم لیا اور آگے روایات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ یہ جو آج کے وقت میں اتنی باتیں بنائی جاتی ہیں نا، وہ یہ آج کے لوگ مناتے ہیں، اس نہ اس زمانے میں ایسا تھا، حالانکہ کافر دشمن تھے، پھر بھی کبھی اس چیز کے اوپر اعتراض نہیں کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کیا، وہاں پہ نارم تھا۔ اور دوسری، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سمجھدار تھیں، اسی لیے اتنی ساری احادیث انہوں نے روایت کی ہیں۔ تو مختصراً یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سب سے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی ازدواجی زندگی گزاری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کنوارے ہیں ان سے فرمایا کہ جو کنوارا استطاعت رکھتا ہو جلد سے جلد نکاح کرے، جلد سے جلد نکاح کرنا چاہیے، جب بالغ ہو جائے نا تو زیادہ اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، جب بھی اتنی مطلب استطاعت ہو جائے نکاح کرنے کی تو کر لیں۔ اور فرمایا کہ جو نکاح نہیں کر سکتا، کوئی مجبوری بھی ہو سکتی، تو اس کو چاہیے کہ روزے رکھے تاکہ وہ پائس رہے، پاک رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بتایا۔ اسی طرح نکاح جو ہے تمام انبیاء کی سنت ہے، تمام نبیوں نے نکاح کیا، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو دینداری کے خلاف ہو کے میں تو شادی کے بغیر رہوں گی، تو اس کے اندر بہت دینداری، بلکہ اسلام نے نکاح کی ترغیب دی کہ شادی کرو، شادی کرنی چاہیے تاکہ انسان کا ایمان، آدھا ایمان جو ہے نا وہ مکمل ہو جاتا ہے نکاح کرنے سے، اس کی نظروں کی حفاظت ہو جاتی ہے، کیونکہ نظریں اگتی ہیں جس وقت کہ نکاح میں نہیں ہوتا انسان، تو اس کی نظریں آوارہ ہو جاتی ہیں، جب انسان نکاح کے اندر آ جاتا ہے تو اس کی نظریں بھی محفوظ ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے نکاح کو بہت زیادہ اہمیت دیے اسلام نے، اور اس کو دنیا داری نہیں کہا، یہ بھی دین ہے کہ انسان نکاح کرے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا اس رشتے کے بارے میں کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے کیا فرمایا؟ لباس۔ اس سے زیادہ خوبصورت لفظ نا کوئی ہو نہیں سکتا اس رشتے کو بتانے کے لیے۔ لباس کہہ کے اتنی ساری باتیں بتا دی گئیں کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حفاظت ہو، دونوں ایک دوسرے کی زینت ہو، دونوں ایک دوسرے کے لیے گرمی سردی سے بچانے کا، یعنی حالات کیسے ہوں ان سے ایک دوسرے بچانے کا ذریعہ ہو، دونوں ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی بھی ہو، لباس انسان پہنتا ہے خوبصورتی ہے نا، زینت ہے، تو اور دونوں ایک دوسرے کا پردہ بھی ہو، ساری چیزیں ایک لباس لفظ کے اندر آ جاتی ہیں۔ کہ اگر انسان اس کو ڈیپتھ میں دیکھے تو میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں، جب یہ کوئی اس رشتے میں آتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کا پردہ بن جاتے ہیں۔ دیکھیں آپ کا لباس آپ کے ساتھ ہے، آپ کے لباس کو نے ڈھانکا ہوا جو آپ کے عیوب ہے، آپ کا لباس جانتا ہے آپ کے عیب ہیں، کہیں کوئی دھبا ہے، کہیں کوئی نشان ہے، باہر والا نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے راز رکھنے والے ہیں، نہ کہ ایک دوسرے کی تشہیر کرنے والے ہوں، جہاں بیٹھے اب میرا ہسبینڈ ایسا ہے، وہ جہاں بیٹھے کہے کہ بیویاں تو ایسی ہوتی ہیں، میری بیوی تو یہ کرتی ہے، نہیں، ایک دوسرے کا لباس ایک دوسرے کو ڈھانپو، ایک دوسرے کی بات کہیں جا کے نہ کرو، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی نہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں، اپنی سہیلیوں کے ساتھ نہیں، کہیں جا کے عیب بیان نہ کرو، یہ تو ایسا ہے، یہ تو یہ کرتا ہے، تم لباس ہو ایک دوسرے کا۔ تو جو لڑکیاں ہیں، جو خواتین ہیں، ان کو ایک نصیحت ضرور کروں گی کہ اپنے گھر کی باتوں کو گھر کے اندر ہی رکھیں، ان کو باہر نہ اشتہار دیں، جتنی وہ باہر نکلیں گی کام بگڑتا جائے گا۔ اگر کوئی اصلاح بھی کرنی ہے کسی ایسے کے پاس لے کر جائیں بات کو جو اصلاح کر سکے، نہ کہ اس نیت سے کہ ڈھنڈورا پیٹنا ہے، ذرا اس کی بدنامی کروں، لوگوں کو بھی پتہ چلے میں کن حالات میں ہوں، خود مظلوم بن گئے اور یہ دیکھو یہ ظالم ہے، یہ ایسے کرتا ہے، نہیں، اس کو راز رکھیں۔ اسی طرح ایک دوسرے کے لیے زینت ہے، دیکھیں جو شوہر بیوی ہوتے ہیں نا زینت کا سامان ہوتے ہیں، دونوں ٹوگیدر ہوتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں، ورنہ اکیلا اکیلا کچھ نہیں ہے۔ इसी तरह हिफाजत का सामान है, देखिए औरत की इज़्ज़त की हिफाजत है इसमें, कोई उसके ऊपर फिर कोई बात नहीं करता जिसके ऊपर उसका शौहर होता है, और जो आदमी है उसकी भी इज्जत का हिफाजत का सामान है औरत, इसलिए कि उसकी भी फिर नज़रें इधर उधर आवारा नहीं घूमेंगी, क्योंकि उसके पास एक बीवी है जिससे वो अपनी ज़रूरत पूरी करता है, तो दोनों एक दूसरे का लिबास है। फिर इसी तरह मियाँ बीवी के ताल्लुक़ को अगर समझना हो हम शुरू से देख लें, जिस वक़्त के शादी का प्रपोज़ल ही होता है, सबसे पहले क्या चीज़ करनी चाहिए, जब आपके घर में आपकी बेटी के लिए कोई रिश्ता आए या आपने कहीं रिश्ता डालना हो अपने बेटे का अपने भाई का, तो सबसे पहले अल्लाह से मशवरा किया जाए, और वो है इस्तखारा। अब कुछ लोग इसके अंदर क्या करते हैं कि हमें कोई ख्वाब आए तो फिर हमें पता चले कि ये क्या सही है या नहीं, इस्तखारा गैब की ख़बर जानना नहीं है, इस्तखारा अल्लाह से मशवरा करना, अल्लाह से खैर मांगना, एक्चुअली इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या, मांगना खैर, आप खैर मांग रहे हैं कि अल्लाह अगर इसमें बेहतरी, एक दुआ है, इस दुआ को हर टाइम आप कर सकते हैं, हर नमाज के बाद आप कर सकते हैं, दिन में रात में कर सकते हैं, मगर फॉर्मल तरीका क्या है, दो रकत नमाज पढ़ के उसके बाद ये दुआ की जाए, और दुआ को आप जितने दिन मर्ज़ी करें, वैसे तो 3 दिन कम से कम करना चाहिए, मगर जितने दिन जब तक आपका दिल मायल ना हो जाए, या तो मायल हो जाएगा या हट जाएगा, और उसी में खैर होगी, जब आप इस्तखारा कर लें तो आपने सबसे बड़े से मशवरा कर लिया, आप दिल में कोई डाउट ना रखें कि हाय मैंने तो इस्तखारा किया था ये क्या हो गया ये क्यों हो गया, ठीक है, तो उस बाद मुतमईन हो जाए। उसके बाद जब आप शादी के लिए देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के लिए जिन चीज़ों का फरमाया कि कोई औरत का ख़ानदान देखा जाता है, माल देखा जाता है, खूबसूरती उसकी देखी जाती है, दीन देखा जाता है, तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ जो है ना वो दीन देखना है उसका, कि इसके अंदर दीन कितना है, क्योंकि आगे नस्लें इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। ये नहीं फरमाया कि खूबसूरती ना देखो या ख़ानदान ना देखो, ये नहीं फरमाया कि ये बाकी चीज़ें बेकार हैं इनको नहीं देखना, नहीं, आप देख सकते हैं, मगर प्रायोरिटी किसको दो, दीन को, दीन को प्रायोरिटी दो और उसके मुताबिक सिलेक्शन करो, तो आप कभी मायूस नहीं होगे। फिर तो फिर अब आपने ये भी कर लिया, अब उसके बाद फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बेहतरीन निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्चा हो, क्या हो, कम से कम खर्चा हो, एक्स्ट्रावेगेंट करना अगर आपके पास बहुत भी है तो ज़रूरी है कि आपने इतने बड़े बड़े कार्ड छपवाने हैं और इतनी बड़ी ग्रैंड एक वो करना है और हर चीज़ में एक्स्ट्रावेगेंट होना है, वही आप पैसा उन लड़के और लड़की को दे दो कि वो अपनी ज़िंदगी शुरू करने में काम में ले आएँ, बजाय इसके कि हम इसराफ़ करें, और इसराफ़ करने वाले के बारे में क्या फरमाया, अल्लाह ताला उनको पसंद नहीं करता जो इसराफ़ करते हैं। निकाह जो है ना शो ऑफ का दिन नहीं है कि शो ऑफ, पैसे की शो ऑफ, कपड़ों की शो ऑफ, मेकअप की शो ऑफ, मैं अपनी शो ऑफ करूं, ये शो ऑफ का दिन नहीं है, ये तो एक सुन्नत पूरी हो रही है और हमने इसको शो ऑफ का दिन बना लिया, तो इसराफ नहीं करना उसके अंदर, कोशिश क्या करनी है, कम से कम खर्चे में हो। और क्या तरगीब दी गई कि मस्जिद में निकाह किया जाए, क्यों, मस्जिद सबसे बाबरकत जगह है, वहाँ पर अपने निकाह किया करो, ठीक है, तो इसलिए अगर हम ये ट्रेंड बनाएं कि इस तरह हम मस्जिदों को भी आबाद करेंगे, जाहिर है लेकिन मस्जिद का अपना तकद्दस है, अपनी ताज़ीम है, तो अपने निकाहों को मस्जिद में हम किया करें। और उसके बाद जब ज़िंदगी शुरू हो तो लड़की को और लड़के को ज़रूरी है कि वो कुरान और सुन्नत को जाने कि ये निकाह के बारे में क्या कहते हैं, मेरा फ़र्ज़ क्या है, मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी क्या है, मैंने कैसे आगे ज़िंदगी गुजारनी है। ऐसे नहीं है कि बस लड़की चूँकि बड़ी हो गई बस ये निकाह के काबिल हो गई, वो नहीं, अब बड़ी हो गई चाहे उसके अंदर अकल कुछ भी नहीं है और उसको कुछ भी नहीं पता, बाद में जाके वो कोई ब्लंडर्स मारती है, इसलिए कि उसको कभी बताया ही नहीं कि बेटा निकाह करना, शादी एक ज़िम्मेदारी है। उसके जहन में क्या होता है कि शादी का मतलब क्या है कि मेरे फ़ोटोशूट हो रहे हैं और मैं आज तक जो स्क्रीन पर हीरोइंस को देखती हूँ आज मैं हीरोइन बन जाऊँगी और सब मुझे देखें, ठीक है आप खुशी करें, आप खूबसूरत भी लगें, अच्छे कपड़े भी पहने, लेकिन ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है, वो ये कि देखो एक ज़िम्मेदारी तुम्हारे पर पड़ने वाली है, तुम में क्या फ़राइज़ हैं जो तुम पे आयद होते हैं, सबसे पहले तुम्हें ये जानना है कि जब तुम जाओगी उस घर के अंदर तो कैसे तुमने अपने शौहर को जानना है, कैसे उसकी पसंद नापसंद का ख्याल करना है, कैसे वहाँ पर निभा करना है, ये चीज़ें समझानी चाहिए। और हमेशा हकूक की बात नहीं, देखो तुम्हारा हक ये, अगर उन्होंने ऐसे कहा तो तुम ये कहना, अगर उन्होंने ये किया तो तुम ये करना, इसकी ज़रूरत नहीं होती। फ़राइज़ बताएं, जब कोई अपना फ़र्ज़ पूरा करता है तो उसको उसका हक ज़रूर मिल जाता। आप फ़राइज़ पूरे करेंगे, आप हक देने वाले बने तो आपको हकूक मिलेंगे। जैसा आप चाहते हैं ना कि ये चीज़ मुझे मिले, तो बिफोर यू गेट समथिंग यू हैव टू गिव समथिंग। अगर आप देंगे नहीं तो मिलेगा कुछ नहीं। अगर आप चाहते हैं मुझे इज्जत मिले इस घर में, इज्जत देना शुरू कर दें। अगर आप चाहते हैं कि मुझे प्यार मिले इस घर में, प्यार देना शुरू कर दें। तो जो आप चाहते हैं अपने लिए, वैसा ही उस घर में जाके रवैया रखें, उसी तरह उन लोगों के साथ डील करना शुरू करें। अब जब शादी हो गई, लड़की को मालूम होना चाहिए कि जो यानी जो हस्बैंड के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप है उसकी दुआ क्या है। उसको मालूम होना चाहिए कि क्या इसकी हदूद हैं, क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, ये भी मालूम होना चाहिए। ये भी मालूम होना चाहिए लड़की को कि अपनी नमाज़ों का ख्याल रखना, ये नहीं है कि नेल पॉलिश ही लगी हुई और नेल पॉलिश उतरी ही नहीं है और फिर क्या। जो शादी का दिन है उस दिन भी नमाज़ का ख्याल रखना है कि उस दिन की कोई नमाज़ें ज़ाया ना हो जाए। आज तो शादी है, सारे घर की नमाज़ें जा रही हैं, क्यों, शादी का दिन है ना, तो शादी का दिन एग्जम्प्ट तो नहीं कर देता नमाज़ को, माफ़ तो नहीं हो जाती उस दिन नमाज़। तो चाहे दुल्हन है, चाहे घर वाले हैं, चाहे जितनी भी मसरूफियत है, चाहे फ़र्ज़ अदा करो, लेकिन नमाज को नहीं छोड़ना उस दिन। और एहतमाम करो कि जिस जगह पे आप शादी रखें वहाँ पे, या वलीमा है मस्जिद में अगर निकाह रखा तो वहाँ पे तो नमाज का एहतमाम होगा, किसी और जगह पे है तो वहाँ पे भी जो होस्ट है उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो सबके लिए नमाज का इंतज़ाम करें, अजान हो और सब नमाज अदा करें, वहाँ पे चादर बिछाई जाए, वहाँ पे सबको नमाज के लिए बुलाया जाए। तो अपनी भी नमाज़ों की हिफाजत करनी है, दूसरों की भी नमाज़ों की हिफाजत करनी। और जो दुल्हन है वो भी कर सकती है कि अपनी नमाज़ों को जमा कर ले, अगर पार्लर जाना है जोहर असर जमा करके पढ़ ले, अब उसके बाद रुखसती है, पता नहीं कब तक घर पहुंचेंगे क्या होगा, मगरिब इशा जमा कर ले, जमा करके भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नमाज को छोड़ना नहीं है किसी सूरत भी। ये नसीहत करके हमें भेजना चाहिए, नमाज ना बेटी छूटे। चाहे अब आप फिर जनाबत का गुसल कैसे करना है ये भी उसको पता होना चाहिए कि उसके बाद गुसल कैसे करना है। ऐसा ना हो कि कुछ हाथों में नेल पॉलिश हो, कुछ कुछ हो और सोच रहे हैं कि बस हो गया मेरा शावर। तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि पता ही नहीं होता, और ऐसे ही बच्चियों को रुखसत कर दिया जाता है, आगे उनको मालूम ही नहीं है कि किस तरह से क्या इन चीज़ों को निभाना है। तो एक तो ये चीज़, उसके बाद सबसे पहले लड़की का चूँकि मामला है इसलिए उसी रेफरेंस से बात करूँगी कि ये मालूम करना उसको ज़रूरी है कि मेरे शौहर की पसंद और नापसंद क्या है। जितनी जल्दी ये बात मालूम कर लेगी उतनी उसकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। जो उसकी नापसंद की चीज़ें हैं उसको ना किया जाए और ये देखा जाए कि इसको पसंद क्या है। देखें, ये दो लोग बिल्कुल डिफरेंट दो घरों से होते हैं, उसका बैकग्राउंड कुछ है, उसका कुछ और है, वो किसी और तरह रेज हुआ, वो किसी और तरह रेज हुई, दोनों एक दूसरे के साथ तो नहीं उनको, यानी ऐसा तो नहीं कि एक घर के अंदर रहे हुए हैं तो एक जैसे माहौल में उनकी ब्रॉट अप हुई हो। डिफरेंट होते हैं, पर्सनैलिटीज़ डिफरेंट होती हैं। तो ये ना सोचे कि अब मैं जा रही हूँ तो जैसे फिल्मों में होता था ना, वहाँ पे वो एक हीरो होता है तो वो उसके लिए सितारे तोड़ के लाने को तैयार होता है, इसी तरह ये मेरा शौहर भी होगा, जो ही मैं जाऊँगी तो वो तो मेरे कदमों में बैठ जाएगा, ऐसे ना सोचा जाए। शुरू के दिनों में शायद हो सकता है ऐसे हो, लेकिन उसके बाद जब रियल लाइफ शुरू होती है तो फिर चीज़ें सामने नज़र आने लगती हैं कि ये फिल्म नहीं है, ये ज़िंदगी है, ये रियलिटी है। कैसे इसको इसके अंदर स्टेप इन करना है, कैसे आपने रियलिस्टिक अपनी एक्सपेक्टेशंस रखनी है। एक्सपेक्टेशन ऐसी ना हो कि बस वो अब मैं इधर कहूँ कि दिन है तो वो दिन कहे, मैं कहूँ रात है तो वो रात कहना चाहिए उसको, और इसने मुझे कंट्रोडिक्ट क्यों किया, और मैं ये कह रही थी इसने ये क्यों कहा, इसको तो मेरे मुताबिक चलना चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ये बहुत ज़रूरी है। इंसान एक्सपेक्ट भी वो करे जो वाकई हकीकत में हो सकता हो। आप देखते हैं कि लड़की एक तरफ अपनी इस तरह का जहन लेकर आती है, दूसरी तरफ लड़के को भी बहुत पैम्पर किया जाता है घर में, वो भी माँ का लाडला होता है, वो जाके सोचता है कि अब ये मेरे साथ ऐसे करे कि मुझे इस तरह लाड करे और सर पे बिठा ले। अब दोनों एक्सपेक्टेशंस ऐसी लेकर जा रहे हैं जो कि सही नहीं है। याद रखें, शादी एक ऐसी चीज़ है जिसमें सेल्फिश होने से कुछ नहीं मिलेगा, सेल्फलेस होना पड़ता है। जितने आप सेल्फलेस होंगे ना कि मैं देने वाली हूँ, उतना ही आपको मिलेगा। कुर्बानी देनी पड़ेगी, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको कई दफ़ा अपने मूड के ख़िलाफ़ भी चीज़ें करनी पड़ेंगी, आपको कई दफ़ा अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी जाना पड़ेगा, आपको कई दफ़ा दूसरे कोई हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी, लेकिन वो किस लिए? फॉर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। शुरू में जो टाइम होता है वो इतना इम्पॉर्टेंट होता है, और उसमें मियाँ बीवी को वाकई वक्त देना चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर सके, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग का टाइम उनको देना चाहिए। हम अगर सास हैं, नंद हैं, जो भी हैं, देवरानी जिठानी जो भी हैं, हमें देखना चाहिए कि जो मैरिड कपल है ना, न्यूली वेड है, उसको टाइम मिले कि वो एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें, एक दूसरे को समझें। ये बहुत ज़रूरी होता है कि शुरू के अंदर के दिन ये होते हैं कि एक दूसरे की उनको समझ नहीं है, बीच में सारा ख़ानदान भी है, अब वो एक दूसरे को समझें कि सबकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करें कि क्या करें। तो इसलिए उनको बहुत ज़रूरी है कि टाइम दिया जाए, ऑन दे ओन उनको टाइम गुजारने को दिया जाए। ऐसे ना किया जाए कि हर वक्त उनके सर पे सवार रहें। तो एक तो ये बात, दूसरी ये इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब कुछ देने वाले हों ना, जब हम कुछ करने वाले हों, फौरन अदले का बदला एक्सपेक्ट ना करें। मैं तो इनके लिए इतना करती थी, इन्होंने मेरे लिए क्या किया, देखो मैंने इसको ऐसे किया था, इसने मुझे ये नहीं किया। हम फौरन चाहते हैं रिजल्ट्स, फौरन रिजल्ट्स नहीं मिलते। आपको कुछ अरसे तक, कुछ सालों तक, बल्कि
आगे आ जाओ साथ, आगे आ जाओ,
4-5 साल तक आपको सिर्फ ये समझ लें मुझे देना ही देना है, फिर आप कुछ उम्मीद रख सकते हैं कि अब कुछ मिलना शुरू हो मुझे। तो शुरू के ये साल बिल्कुल ना एक्सपेक्ट करें कि मैं अब ये कर रही थी, अब मुझे वैसा बदला नहीं मिला, मुझे वैसा जवाब नहीं मिला। हो सकता है आप डिसअपॉइंट हो। और कभी गिले शिकवे ना करें। गिले शिकवे जो है ना, और एहसान जिताना, ये चाहे दोस्तों में हो, चाहे किसी रिश्ते में भी हो, ये कैंची है ताल्लुकात को काटने की, इससे ताल्लुक कट जाते हैं। गिले शिकवे करते रहना, आपने ऐसे नहीं किया, आपने मेरी एनिवर्सरी नहीं याद रखी, आपने मेरी बर्थडे नहीं याद रखी, आपने फलाना नहीं किया, आपने मुझे गिफ्ट नहीं दिया, वैलेंटाइन डे पे नहीं मुझे कुछ पूछा, आपने ऐसे नहीं किया, उससे क्या होगा? गिले शिकवे करने से ताल्लुकात में दरार आएगी, ये कैंची है। और ना ही एहसान जताए, मैं तो इतना करती हूँ और मुझे क्या मिला। इस रिलेशनशिप में एहसान नहीं जताना होता। याद रखें, जब आपने एहसान जिता दिया, जो आपने नेकी की थी वो भी ज़ाया हो गई, और इंसानों से भी नहीं कुछ मिला। जो आपने नेकी की है सिर्फ अल्लाह की खातिर, जब बेलॉस होकर करते हैं ना, अल्लाह ताला इंसानों से भी आपको बदला दिलाएगा, और अल्लाह अपने हाँ भी देगा बदला। कितना फ़ायदा हो गया ना, इंसानों के दिल में भी आपके लिए मोहब्बत डाल देगा, और अपने हाँ भी अजर देगा आखरत में। याद रखें, दिल अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान है, जिधर चाहे दिलों को मोड़ दे। अगर आप चाहते हैं किसी के दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाए, अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह तो इसका दिल मेरी तरफ फेर दे, चाहे शौहर है, चाहे कोई भी है, कोई भी रिश्ता है। और अल्लाह ताला ने एक नुस्खा बता दिया कुरान में कि कैसे दुश्मन को भी दोस्त बनाना है। फरमाया, इदफा बिल्लती ही आसन, आसन के साथ ना भलाई के साथ बुराई को दूर कर दो। कोई बुरा कर रहा है, आप भला कर दो, आप देखोगे जो आपका दुश्मन है वो भी दोस्त बन जाएगा। दुश्मन को दोस्त बनाने का नुस्खा। लेकिन ये गट्स कम लोगों में होते हैं, ये हौसला कम लोगों में होता है। अगर इतना हौसला आप अपने अंदर रखेंगे ना, वाकई आप चाहते हैं कि कोई दोस्त बन जाए, और वाकई आप चाहते हैं कि इसको मैं अपना बना लूं, तो ये अपना बनाने का गोर है। फिर अगला एक पॉइंट ये है कि एक दूसरे के ख़ानदानों को इज्जत दी जाए। कई झगड़े इस वजह से होते हैं कि एक दूसरे के ख़ानदान को इज़्ज़त नहीं दी जाती। जब आप अपने शौहर की माँ या बहन के बारे में ज़ुबान खोलने लगे, तो सोच लेना कि अगर वो भी ऐसा करेगा तो फिर क्या होगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। इसी तरह अगर मैं करूँगी तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। تو کبھی ایک دوسرے کے خاندانوں کی برائیاں اور ان کے اوپر باتیں اور وہ نہیں کرنی, عزت دینی ہے, ویسے بھی عزت دینی ہے, اور باہر جا کے بھی ان کی برائیاں نہیں کرنی, کیونکہ اس سے بہت سارے ایشوز پیدا ہوتے ہیں, بہت سارے جھگڑے صرف اس معاملے کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں. ایک دوسرے کو معاف کرنا آ جائے گا نا, یہ ایسی چیز ہے, سوری یہ کوئی فرینڈ ہے, اچھا چلو اب تم سے ناراضگی ہوگی, اب نہیں میں نے اس سے بات کرنی, اب میں نے اس کو فون ہی نہیں کرنا. ان سے تو آپ کا دن رات کا تعلق ہے, آپ کے سسرال ہیں یا آپ کے شوہر ہیں, یہ ان کے ساتھ تو ہمیشہ کا تعلق ہے نا. سسرال کو کہتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے سایہ ہے, آپ اپنے سائے سے تو نہیں بھاگ سکتے, رائٹ, وہ تو آپ کے ساتھ ساتھ ہی رہے گا, آپ بھاگ کے نہیں جا سکتے ہم مجھے اپنے سسرال بہت برے لگتے ہیں میں ان سے بس جان چھڑاؤں, نہیں, وہ آپ کے ساتھ رہیں گے, تو پھر کیوں نہ دوستی کر لی جائے, بجائے اس کے کہ انسان ایک رنجشوں کے ساتھ, ایک ہر وقت کی ایک پین کے ساتھ رہے. اس لیے جب آپ دل اتنا بڑا کر لیں گے نا کہ معاف کرنا آپ کو آ جائے گا, کہیں پہ بھی ایڈجسٹ کر لیں گے, کیونکہ غلطیاں سب سے ہوں گی, آپ سے بھی ہوتی ہیں, ہمیں اپنی یوزلی غلطیاں نظر نہیں آتی نا, اس لیے ہم سوچتے ہیں میں تو بالکل صحیح ہوں اور یہ سارے غلط کرتے ہیں, میرے ساتھ ایسے کرتے ہیں, نہیں میں بھی غلط کرتی ہوں, تو جب وہ کچھ غلط کریں تو آپ معاف کر دیں. پھر اسی طرح بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ شوہر کا جو دل کا راستہ ہے نا وہ کس کے تھرو ہے, پیٹ کے تھرو ہے نا, تو پیٹ کے تھرو ہے, تو جو لڑکیاں اگر اچھا کھانا سیکھ لیں تو وہ اس طرح سے بھی بہت اپنے شوہر کو اپنا بنا سکتی ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو جیسے کہا نا پسند ناپسند کو دیکھنا چاہیے, کئی شوہر ایسے ہوتے ہیں جن کو کھانے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی, ان کو یہ ہوتا ہے بس گھر ہر وقت صاف ہو. کئی شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو گھر کی بھی نہیں پرواہ ہوتی, وہ کہتے ہیں تم ہر وقت بنی سنوری رہو. کئی شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کسی چیز کی نہیں پرواہ, ان کو کہتے ہیں کھانا ضرور تیار ہو. جب وہ گھر پہ آتے ہیں تو اگر کھانا نہ تیار ہو تو ان کا پارا آسمان میں, اکثر ایسے ہوتے ہیں, ہے نا. اور ویسے بھی اگر انسان اچھا کھانا بناتا ہے تو اس طرح سے بھی اپنا بنا سکتا ہے دوسرے کو. آپ دیکھیں کئی لڑکیاں کہتی ہیں ہماری کون سی یہ ذمہ داری ہے کھانا بنانا, خود ہی ہوٹل سے لیں. آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں عبادت کرتے تھے کون ان کے لیے کھانا لے کے جاتا تھا, کون لے کے جاتا تھا, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اور غار حرا پہ چڑھنا دیکھا کیسا, جو لوگ گئے ہیں ان کو پتہ ہوگا آدمیوں کے بھی پسینے نکل جاتے ہیں, اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کر جا رہی ہیں ان کے لیے, مالدار ترین عورت ہیں ہاں مکہ کی, اور کوئی غلام کو بھیج دیں کہ جاؤ تم دے آؤ, مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں جاتی پھروں اتنی محنت کروں. لیکن دیکھو شوہر کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا, اور پھر دیکھیں کھانا بھی جو لذیذ ہوگا وہ دل جیت لے گا. آپ جو تھے امام احمد بن حنبل جو تھے ان کے استاد ہیں امام شافعی, تو امام شافعی ایک دفعہ امام احمد بن حنبل کے گھر آ رہے تھے, تو امام احمد بن حنبل نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ بہت اچھا سا کھانا تیار کرو. میرے استاد کی نا دو صفات خصوصیات کہہ لیں, ایک یہ کہ وہ تہجد گزار ہیں, دوسرے وہ کھانا بہت کم کھاتے ہیں. تو انہوں نے بیٹیوں نے کھانا تیار کیا, جب ان کے سامنے رکھا کھانا تو وہ کھانا کھاتے چلے گئے, اب ظاہر ہے کھانا تو زیادہ رکھا جاتا ہے نا, کھانا کھاتے چلے گئے. اچھا اب وہ بھی حیران ہے کہ دیکھو ان کے بارے میں تو یہ مشہور تھا کہ بہت کم کھانا کھاتے ہیں, کھانا کھاتے چلے گئے. اچھا چلو, اور ایک برتن رکھ دیا کہ یہ وضو کا برتن ہے, کہ تہجد کے لیے اٹھیں گے تو وضو بھی کرنا پڑے گا. جب صبح ہی تو دیکھا کہ برتن بھی ویسے کا ویسے پڑا ہوا ہے اور وضو کا پانی بھی نہیں یوز ہوا ہوا, تب وہ حیران ہے کہ ان کا تو یہ تھا, بیٹیاں بھی حیران ہو رہی ہیں کہ یہ تو تہجد گزار اور بہت کم کھانا کھاتے تھے, تو یہ کیا ہوا, کھانا بھی انہوں نے بہت کھایا اور پانی بھی ویسے ہی پڑا ہوا. تو امام شافعی نے بلایا امام احمد بن حنبل کو اور پوچھا کہ یہ آپ کے گھر میں نا کھانا کس نے بنایا تھا کل. انہوں نے بتایا کہ میری بیٹی نے بنایا, اور میری بیٹی کا طریقہ یہ ہے کھانا بنانے کا کہ ادھر کھانا بنانا شروع کرتی ہے ادھر قرآن کی تلاوت شروع کر دیتی ہے, جب تک کھانا پورا ہوتا ہے اس وقت تک وہ ایک روب پورا کر چکی ہوتی ہے قرآن کا. فرمایا جبھی تو میں کہوں کہ میں ایک لقمہ لیتا تھا تو اتنی لذت آتی تھی کہ دل چاہتا تھا دوسرا لوں, دوسرا کھاتا تھا تو اس سے بھی زیادہ لذت آتی تھی, دل چاہتا تھا تیسرا لوں, اس کی وجہ سے میں نے اور زیادہ کھانا کھا لیا. اور یہ بھی دیکھو کہ اس کے بعد میں نے ایک حدیث کو لے کر اس سے کئی سو مسئلے نکالے, اور پھر میں نے اسی وضو کے ساتھ تہجد بھی پڑھی اور فجر بھی پڑھی. سبحان اللہ کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھانا بنائے گا بھی تو اس میں اللہ تعالیٰ لذت بھی ڈال دے گا, وہ شوہر کو بھی پسند آئے گا. یہ تو خیر میری تو آزمائی بھی بات ہے کہ جب ایسا ہوتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس پہ لذت ڈال دیتا ہے. یہ نہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں کوئی لذت ہے, اللہ لذت ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے کسی کو کوئی چیز پسند کرا دے اور چاہے تو اس کو آپ کتنی محنت سے بنائیں اور وہ کہ یہ کیا بنا دیا. تو یہ دوسرے, اپنے شوہر کو کبھی بھی کسی کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. میرا بہنوئی تو ایسا ہے, میرا بھائی دیکھو کتنا اچھا شوہر ہے, میرا بہنوئی دیکھو کتنا اچھا شوہر ہے, تمہارا بھائی دیکھو کتنا اچھا شوہر ہے, تم کیسے ہو. کمپیریزن نہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہر ایک بندے کے اندر اپنی کوالٹیز ہیں. ہو سکتا ہے اس میں جو کوالٹی ہو وہ اس میں نہ ہو, ہو سکتا ہے جو اس میں ہو وہ اس میں نہ ہو. تو آپ پرفیکشن نہیں چاہ سکتے. یاد رکھیں کوئی انسان اس دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے. جو لڑکیاں یہ سوچ کے شادی کرتی ہیں نا پرفیکٹ کوئی شہزادہ ملنے لگا, ایسا نہیں ہوتا. اس میں بھی خامیاں ہوں گی جیسے کہ آپ کے اندر خامیاں ہیں, اور اس میں بھی کئی خوبیاں ہوں گی. اس کی خوبیوں پہ نظر رکھو, اس کی خامیوں کو اگنور کرو. خوبیوں پہ جب تک نظر رکھتے رہو گے اس وقت تک تعلق اچھا رہے گا. جس دن آپ نے خامیاں چننے شروع کر دیں, یہ بھی خامی, یہ بھی خامی, یہ بھی خامی, اس بندے سے نفرت ہو جائے گی آپ کو. پھر اسی طرح جو اس کی چھوٹی چھوٹی بھی کوئی ایفرٹ ہو اس کو اپریشیٹ کیا جائے, اس کے اوپر اس کی تعریف کی جائے. کون نہیں چاہتا کہ اس کی تعریف کی جائے؟ چھوٹی سی چیز بھی شوہر کرے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے. کوئی گروسری لے کر آ گیا, یہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا, یہ آپ نے بڑی اچھی چیز کر دی. اگر آپ اچھے جملے اپنے منہ سے بولیں گے آپ دیکھیں گے اس سے بھی دوسرے کے دل میں آپ جگہ بنا لیتے ہیں. یہ زبان ہے, ویسے پرانے لوگ کہتے تھے نا زبان ہی انسان کو عرش تک لے جاتی ہے, اور زبان ہی فرش پہ لے آتی ہے. یہ زبان ہے, اس سے میٹھا بولو گے تو آپ کو رسپانس بھی اچھا ملے گا, اور زبان سے کڑوا بولو گے تو کیا ایکسپیکٹ کرو گے کہ کیا ملے. اور ہم اپنی زبان کا ہی پھل کاٹتے ہیں. جو ہم نے زبان سے اپنی فصل بوئی ہوتی نا اسی کو ہم کاٹتے ہیں. وہ ہماری کئی زبانوں کے قصور ہوتے ہیں جو کہ ہمیں پھر بھگتنے پڑتے ہیں. تو آپ کے چھوٹے چھوٹے جیسچرز بھی نا دوسرے کو بہت اچھا میسج دے سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب اپنی بیوی کے منہ میں نوالا ڈالتا ہے تو اس کے اوپر بھی اس کو اجر ملتا ہے. لائک بات کہنے کا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آدمی اپنی بیوی کے لیے جو بھی کرتا ہے اس کے لیے اوپر اس کو اجر ملتا ہے. جسٹ ایک چھوٹی سی چیز کو بھی حدیث میں ایسے بتایا گیا کہ اس کا مطلب آدمی اپنی بیوی کے منہ میں نوالا ڈالے, کتنی پیاری بات ہے. یہ وہ بھی ڈال سکتا ہے اور ڈالنا چاہیے, اور یہ ایک ایکسپریشن آف لو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جہاں سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیالے پہ منہ لگا کے پیتی تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پیتے تھے. محبت کی بات ہے نا, اکٹھے مل کے کھانا کھاتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے تھے. یہ نہیں کہ ہسبینڈ آفس سے آئے تو بیوی نکل جائے جاب کے لیے, بیوی واپس آئے تو ہسبینڈ چلا جائے جاب کے لیے. ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ایک دوسرے کے لیے اسپینڈ کرنے کا. کیا محبت پیدا ہوگی؟ تو یہ رشتے بنانے سے بنتے ہیں, رشتوں کو بنایا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ایک دوسرے کو ایموشنل سپورٹ دینا اس میں بہت ضروری ہے. کہ جب شوہر کبھی تھکا ہوا آیا ہے یا وہ اپنی کسی جاب کی وجہ سے پریشانی میں ہے تو یہ نہیں کہ میں تو آج خوش ہوں, اب آپ کی پریشانی جائے جہاں پہ بھی مرضی اور میں اپنی خوشی میں. نہیں, جیسے اس کا موڈ ہے اس کے مطابق خود کو ڈھال لو. اگر وہ خوش ہے تو آپ بھی ایک خوشی کا اظہار کرو. یہ نہیں کہ آج میرا موڈ آف ہے چاہے آپ کی کتنی بھی خوشی ہے, وائس ورسا بھی ہے. مگر یہاں پہ میں لڑکی کے اس پوائنٹ آف ویو سے بتا رہی ہوں. تو اس کے اندر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا موڈ کیسا ہے, اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لو. اور یہ بھی اس کے اندر ضروری ہوتا ہے کہ فزیکلی بھی انسان ایک دوسرے سے قریب رہے. فزیکلی کیسے؟ کہ ایک کمرے میں آپ بیٹھے ہوئے نا تو ایسا نہ کریں کہ آپ کا شوہر وہاں بیٹھا ہوا اور آپ ادھر بیٹھے ہیں, وہ اپنے کمپیوٹر پہ اور فون پہ اور آپ اپنے کسی فون پہ اور اس پہ ٹیکسٹ کریں. قریب بیٹھیں. فزیکلی قریب ہونا بھی انسان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرتا ہے. یعنی کہ وہ اوپر بیٹھے ہوئے آپ نیچے بیٹھیں, وہ نیچے آئیں تو آپ اوپر چلے جائیں, ایسا نہ کریں. ٹھیک ہے. پھر اگر آپ افورڈ کر سکتے ہو ایک دوسرے کو تحفے تحائف ضرور دیں, مگر ایکسپیکٹ نہ کریں. تحفہ اس کو ضرور مجھے دینا چاہیے, کبھی آپ دیں کبھی دوسرے نے دے دیا. تحفہ وہی ہوتا ہے جو خوشی سے دیا جائے, ڈیمانڈ کر کے نہیں تحفے لیے جاتے. اور نہ یہ کہ یہ اوکیجن ہے تو مسٹ تحفہ ہونا چاہیے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. پھر اور ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنا سیکھے. برداشت, یہ ایک کی ہے کہ جو میں کہوں گی. برداشت, برداشت کرنا جو ہے نا, سمجھ لیں جس کے اندر برداشت آ گئی نا वो कहीं पे भी कामयाब हो सकता है। कई चीज़ें आपको कमियां नज़र आएंगी, खामियां नज़र आएंगी। टॉलरेंस जो हमारे अंदर से सब में से आज ख़त्म हो गई है। ज़रा सी बात होती है तो हम एकदम भड़क उठते हैं, ज़रा सी चीज़ होती है तो हम शिकायत करने लगते हैं, ज़रा सी मुश्किल को बर्दाश्त नहीं कर पाते। नहीं, बर्दाश्त, इस रिश्ते में बर्दाश्त ज़रूरी है और आप शुक्रगुजार हों। देखें, अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा ऐसी औरत से बात भी नहीं करेगा, अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा नाराज़गी है ऐसी औरत के साथ। बल्कि जहन्नुम में जाने का औरतों का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि अपने शौहरों की नाशुक्री करती हैं। शुक्रगुजार बने, जितना भी है जो भी है उनकी शुक्रगुजारी करें। अगर आप हर बात पे नाशुक्री करेंगे ना तो वो कहेगा इसके साथ क्या भलाई करनी, इसने तो वैसे ही हमेशा ही नाशुक्री रहना है, तो कभी शुक्रगुजार होती नहीं, क्या फ़ायदा इसके साथ भलाई करने का। तो शुक्रगुजारी, कि शुक्रगुजारी क्या होती है, ये नहीं कि दूसरा एक बहुत परफेक्ट इंसान है तब मैं शुक्रगुजार बनूँ, आगे आ जाएँ, बल्कि शुक्रगुजारी होती है कि दूसरे की नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ उसको एक्सेप्ट किया जाए और उसकी जो पॉजिटिव चीज़ें उस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए और ये सोचा जाए यही मेरे नसीब में था। बाज़ औरतें सारी ज़िंदगी इस कंप्लेंट में रहती हैं, आए मेरे तो इतने रिश्ते आए थे ना और भी, वहाँ पे हो जाता तो अच्छा था, अब वहाँ पे हो जाता तो सही था, ये मुझे मिल गया। आपको क्या पता अगर आप वहाँ पर होती तो फिर क्या होता, नहीं पता ना। तो ये है नाशुक्री, जो आपको मिल गया सोचे अल्लाह ने मेरी तकदीर में यही लिखा था, और अल्लाह के फैसले से ज़्यादा अच्छा फैसला किसका हो सकता है, यही था मेरे लिए परफेक्ट तो अल्लाह ने इसको मुझे दे दिया। और अगर आप यही सोचते रहेंगे तो सारी ज़िंदगी एक कर्ब में रहेंगे, ना बस ऐसे हो जाता तो ये हो जाता, तो उस वक्त अम्मी ने उसके साथ करने को कहा था तो मैंने ये किसके साथ कर लिया, क्यों ऐसा हो गया, तो उसके ऊपर सारी ज़िंदगी कुड़ने से बेहतर है इसको तकदीर का फ़ैसला और अल्लाह का फ़ैसला समझ के राज़ी बरज़ा रहें, अल्लाह से राज़ी रहें कि ऐसे ही अल्लाह ताला ने लिखा हुआ था। फिर ये भी है, अपने शौहर के लिए बनना संवरना, ये औरत के लिए बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। याद रखें, कभी ऐसा दिन नहीं होना चाहिए कि आपके शौहर को आपके अंदर से कोई स्मेल आए। मैं सबको कहती हूँ, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अब गंदे मंदे घूम रहे हों घर के अंदर, बाहर से भी और अंदर भी अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। बाहर से भी तो बहुत कभी कभी हम लोगों के लिए बहुत संवर लेते हैं, लेकिन अंदर से हमारी हाइजीन का क्या हाल है ये अल्लाह ही जानता है, या हमारा हम खुद जानते हैं। तो इसलिए शौहर घर में आए तो प्याज की और लहसुन की स्मेल आपसे ना आ रही हो, शौहर घर में आए तो ऐसा ना हो, तो बदलें कपड़े उस वक्त, उनके आने से पहले बदलें। इसलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि शौहर की नज़रों की हिफाजत आपके ज़िम्मे है। उसको बाहर बहुत कुछ नज़र आता है, बहुत कुछ नज़र आता है, अगर वो अपने ईमान को अपनी इज्जत को बचा के अपने घर आता है तो उसको ऐसा नहीं नज़र आना चाहिए कि ये बस कोई नौकरानी है घर की या क्या है। हाँ, हम कहते हैं हम काम बहुत कर रहे हैं, सफाइयाँ भी तो की हैं मैंने, खाना भी मैंने, वो अपनी जगह है, मगर उसको एक अच्छी साफ़ सुथरी प्यारी लगने वाली दिल को भाने वाली औरत नज़र आनी चाहिए। अब देखिए, हम यहाँ पर आए, हम सब तैयार हुए, क्या हम अपने शौहरों के लिए भी कभी तैयार होते हैं? हाँ, कभी तैयार होते नहीं होते, तो फिर अब वो दूसरी औरतों को ही देखेंगे ना। फिर हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए कि देखो ये इधर देखते हैं उधर देखते हैं, इनकी नजरें इधर भटकती हैं, क्यों ना भटकेंगी बताएं। और बहुत सारी औरतें सारा दिन ही नाइट सूट में रहती हैं, चेंज ही नहीं करती। अब वो कहते बाहर जाएं तो इनको हिजाब में देखें, घर में देखें तो नाइट सूट में देखें, भाई कहाँ देखें वो बेचारे पे, तो फिर वो स्क्रीन पे देखेंगे या फिर स्क्रीन पे देखेंगे या फिर अब वो बेचारे लाचार क्या करें। लेकिन हमसे पूछ है इस बारे में, याद रखें हमसे पूछ है, क्योंकि हमने उसको मजबूर कर दिया कि उसकी नज़रें भटके, तो हमारी पूछ होगी अल्लाह के सामने, क्योंकि हम उसको वो प्रोवाइड नहीं कर रहे जो कि हमारी जिम्मेदारी है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर जॉब, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ खाना तैयार करके और घर साफ कर देना नहीं है। या हम कहते हैं बच्चों के साथ जो इतने बिजी थे, चाहे जो मर्जी हो जाए शौहर के लिए तैयार हूँ, इस पे आपको अजर मिलेगा। देखो, आप समझते हो अजर सिर्फ नमाज पढ़ने पे, अजर सिर्फ जिक्र करने पे है, हाँ नहीं, ये भी अजर है कि आप अपने शौहर के लिए तैयार हों और कभी भी शौहर की ज़रूरत के ऊपर उसको इनकार ना करें। उसकी ज़रूरत है आपसे, और आप कहेंगे नहीं नहीं मेरा मूड नहीं है, और मेरा तो ये नहीं है, और मैं नहीं ऐसे नहीं। हदीस में आता है कि इसके ऊपर भी अजर मिलता है। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह इस बात पे अजर मिलेगा जो कि हम अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, इसलिए कि अगर तुम कहीं हराम जाके अपनी ज़रूरत पूरी करोगे तो उसके ऊपर गुनाह है ना, तो अपनी बीवी के पास जो आके उससे अपनी ज़रूरत पूरी करता है उसके ऊपर भी उनको अजर मिलता है। तो इसलिए हमने ना इस्लाम को बहुत इतना सा करके कूजे में बंद कर दिया और सोचा कि बस इस्लाम मुसल्ले पे और बस मस्जिद में। इस्लाम इज़ अ वे ऑफ लाइफ, ये आपको सिखाता है, हर चीज़ सिखाता है। देखो कैसे अपने घरों को खुशहाल घराना बनाना है, कैसे हैप्पी मैरिड लाइफ गुजारनी है, और ये किस तरह मुमकिन है, सारी टिप्स आपको देता है। फिर जब हम ये सोचते हैं ना अब मेरा हस्बैंड कहीं और लगता है इसका चक्कर है या कहीं और है, वो इसलिए कि बाज़ दफ़ा उसमें हमारा भी कसूर होता है, बाज़ दफ़ा हम वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे होते जो उसको चाहिए। और हर आदमी चाहता है कि उसकी बीवी अच्छी लगे, हर आदमी चाहता है। तो अपने घरों में खुशबू भी लगाएं, अपने घरों में अच्छा पहने भी, अपने घरों में बने संवरें भी। मना क्या है कि आप गैर महरूमों के सामने ना बने संवरें, जबकि हमने उलट कर दिया, शौहर के सामने कुछ नहीं है और गैर महरम के लिए सारा बनाओ सिंगार है। तो इसलिए अगर हम नहीं चाहते कि हमारा शौहर इधर उधर देखे, खुद अपने आप को ऐसा रखें कि उसकी नज़र इधर उधर जाए ही नहीं। और इसमें हमारी ज़िम्मेदारी, जी हमारी ज़िम्मेदारी, ये मैं लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जी जी हाँ जी इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं अभी बताती हूँ आपको। तो एंड हम इस बात पे करते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, नहीं जज़ाकल्लाहु खैरन, फस्सालिहातु क़ानितातुन हाफिज़ातुन, जो नेक बीवियाँ होती हैं ना वो फरमा बरदार होती हैं और अपनी हिफाजत करने वाली होती हैं, अपनी हिफाजत करने वाली होती है। और फरमा बरदार किसकी? अल्लाह की तो फरमा बरदार है, शौहर की फरमा बरदार। और हिफाजत किस चीज़ की? उसके माल की, उसकी इज्जत की। आपकी इज्जत उसकी इज्जत है, उसका माल आपके हाथों में होता है कि आप उसको उड़ाएं नहीं, इसराफ नहीं करें। ये दो खूबियाँ बताई हैं कुरान के अंदर ऐसी औरत की जो नेक बीवी होती है। इसी तरह आखिर में एक हदीस के साथ ख़त्म करती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत जो पांच वक्त की नमाज़ पढ़ती है, रोज़े रखती है, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करती है और अपने शौहर की फरमा बरदार है, वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहेगी दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह। तो इसलिए और अच्छी बीवी कौन सी है कि एक और हदीस में इसकी तारीफ़ बताई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका शौहर जब उसकी तरफ देखे तो उसका दिल खुश कर दे, नहीं वो आपकी तरफ देख के मायूस ना हो कि ये क्या ना, उसका दिल खुश हो जाए देख के, वो घर आए तो खुशी से आए कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, ये ना हो कि बाहर ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। जिनके शौहर बाहर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं जॉब के अलावा और उनका घर आने को दिल नहीं चाहता, ये अलार्म है उन औरतों के लिए, ये अलार्म है, इससे अलार्म्ड हो जाना चाहिए और उस वक़्त से ही अपने लिए बेहतरी के लिए कोशिश करनी चाहिए कैसे बेहतरी की जाए कि उसका दिल करे घर आने को। अपने आप को फ़िक्स करें, अपने मामलात को फ़िक्स करें, मगर इसको लेजरली ना लें, इसको ऐसे ही ना लें कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इधर बैठा हुआ है, उधर बैठा हुआ है, उधर बैठा हुआ है, वीकेंड पे भी कहीं चला गया इधर, नहीं उसका दिल घर में लगना चाहिए और उसका दिल लगाने वाली उसकी बीवी होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला हमें बेहतरीन बीवियाँ बनाए, जैसे बीवी होने का हक है अल्लाह ताला वैसे हमें बनाए। और इसके साथ सबसे ये एक दुआ सब इंशाल्लाह मांगे मेरे पीछे पीछे, और इसका मतलब भी मैं आपको बताऊंगी जो दुल्हन के लिए, बारक अल्लाहु लकी व बारक अलैकी व जमा बैनकुमा फिल खैर, कि अल्लाह ताला बरकत दे तुम पे और तुम्हारे ऊपर बरकत करे और तुम दोनों को खैर के ऊपर जमा करे। ये मसनून दुआ है दुल्हा दुल्हन के लिए, ये दुआ देनी चाहिए। अल्लाह ताला जो आज हमने सुना है अल्लाह ताला इसको हमारे हक़ में कबूल करे, हमारे ख़िलाफ़ हुज्जत ना बनाए, और अल्लाह ताला हमें वाकई जैसी मोमिना बीवी होनी चाहिए जो खसूसियात कुरान और हदीस में, अल्लाह ताला हमें वैसी बीवियाँ बना दे और इसकी हमें पूछ ना हो आखरत में।